पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 पद। और स्मुर्ना की कलिसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनके निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, लोग परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें तो भी वे अपने जीवन में इस तरह या उस तरह के क्लेशों का सामना करते हैं। एक सामान्य नियम के आधार पर जब वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यद्यपि उनके जीवन में बहुत सारे क्लेश हुआ करते थे, मगर अब सारे क्लेश रुक जाने चाहिए और उन्हें छोड़ के चले जाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संरक्षण देता है। मगर वास्तविकता में हम देख सकते हैं कि प्रभु में ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो अभी भी पीड़ित हैं, परंतु जिन क्लेशों का वो सामना करते हैं वो क्लेश उन क्लेशों से अलग है जिनका सामना संसारिक लोग करते हैं। वो एक समान दिखाई दे सकते हैं, परंतु जब विश्वासी क्लेश को विश्वास से पार करते हैं तो उनका आत्मा और प्राण संपन्न होता है और स्वर्ग में उनके प्रतिफल एकत्र होते हैं। जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था, क्लेश 2 प्रकार के होते हैं जिनका सामना विश्वासी करते हैं। पहला क्लेश वो है जिनका सामना आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे क्लेश है जिनका सामना आप इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचनानुसार जीना चाहते हैं, जो कि ज्योति है इस अंधकार के संसार में। उदाहरण के लिए, आप क्लेश का सामना अपने अविश्वासी परिवार या पड़ोसी से कर सकते हैं। जब आप सत्य अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो फिर आप अविश्वासी स्कूल से या अपने व्यापार संबंधी चीजों से क्लेश का सामना कर सकते हैं। इस तरह के मामले में सारे के सारे क्लेश और सताव वो महान प्रतिफल और आशीषें बन जाएंगी। प्रेरितों ने इस बात पर विश्वास किया, इसीलिए क्लेशों का सामना करने के लिए वे एहसान मंद थे जो प्रभु के नाम के लिए थे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में प्रेरितों ने बहुत प्रकार के क्लेशों का सामना किया, जैसे कि कोड़े मारे गए, कैद में डाला गया प्रभु के नाम की खातिर। 41 पद में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य हो ठहरे। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेरितों ने कोई बोझ और कोई शर्म महसूस नहीं की जब प्रभु के नाम के लिए उन्होंने क्लेश सहा, बल्कि वे आनंदित थे, धन्यवादी थे और प्रसन्न थे। प्यारे भाई और बहनों, मगर कुछ मामलों में आप वास्तविकता में अनावश्यक क्लेश या सताव अपने ऊपर ले आते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमानी से कार्य नहीं करते। हालांकि आप कहते हैं कि आप इसीलिए पीड़ित हैं क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर अपने विश्वास के कारण। यदि एक पत्नी मूर्खतापूर्ण ढंग से कार्य करें और पति अविश्वासी हो तो वो पति पत्नी के चर्च जाने के कारण ईर्ष्या या जलन रख सकता है। जब आप आत्मसंयम ना रखें, जब आप अस्पष्ट हो, जब आप चीजों की पहचान ना करें कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो आप अपनी कलीसिया को या परमेश्वर के दास को किसी गाले का शिकार बना सकते हैं, या फिर आपकी बातों या आपके कामों के द्वारा आपके अविश्वासी परिवार के सदस्य प्रतिकार कर सकते हैं। ये वो क्लेश नहीं है जो इसीलिए आप सामना करते हैं क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बल्कि ये क्लेश वो क्लेश है जिनसे आप बच सकते हैं यदि आप बुद्धिमान हो और भलाई के काम दिखाएं। आपको ये नहीं कहना चाहिए क्या प्रभु के कारण सताए जा रहे हैं, जबकि आप सताए इसलिए जाते हैं क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर इन मामलों के असमान कुछ ऐसे क्लेश और सताव होते हैं जिनका सामना विश्वासी उन लोगों के द्वारा करते हैं जिन्हें शत्रु दुष्ट और शैतान भड़काता है। ये वो क्लेश और सताव है जो दोनों पुराने और नए नियम में विश्वास के पूर्वजों के ऊपर भी आए परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को पूरा करने के लिए। आजकल के दिनों में आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो साहस से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं जब उन्हें पता चले कि उन्हें ऐसे सताव और क्लेश का सामना करना पड़ सकता है? तो भी इस कलीसिया के पास यह कर्तव्य है कि जब समय आता है तो ऐसे क्लेश और सताव के बावजूद भी सुसमाचार का प्रचार करें। हालांकि बेशक इस कलीसिया ने असंख्य सताव और क्लेश का सामना किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन इस कलीसिया ने महान उपलब्धियां भी प्राप्त की है विश्व मिशन के प्रावधान में ऐसे क्लेश और सताव के बावजूद भी। और जिस प्रकार से रोमियों 12 अध्याय 14 पद में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष तो श्राप ना दो। यदि आप बैर ना रखें उन्हें श्राप ना दे जो आप पर सताव करते हैं, बल्कि आप उन्हें आशीष दें और उनके लिए प्रार्थना करें, तो आपके पास कितना भलाई का हृदय हो सकता है। प्रेरित पौलुस के पास ऐसा हृदय था और उसने प्रभु के लिए तमाम क्लेश और सताव का सामना आनंद और धन्यवाद के साथ किया। इसीलिए अब वो स्वर्ग में ऐसे महान पद पर है। चाहे किसी भी प्रकार के क्लेश का सामना प्रभु के नाम से सत्य में चलने के लिए आप क्यों ना करें, कृपया आनंदित होइए, प्रसन्न होइए अपने हृदय की गहराई से। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुतायत की आशीष दे, ना सिर्फ स्वर्ग में बल्कि इस धरती पर भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, उन सताओं के असमान जिनका सामना आप प्रभु के नाम के लिए कर सकते हैं, ऐसे भी क्लेश होते हैं जिनका सामना आप इसीलिए करते हैं क्योंकि शैतान आप पर दोष लगाता है सत्य में जीवन ना जीने के लिए। हालांकि लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार का सताव और क्लेश आता है शत्रु दुष्ट और शैतान की ओर से प्रभु पर विश्वास करने से पहले। वे शत्रु दुष्ट और शैतान के शिकार बन जाते हैं बिना ये जाने हुए कि क्यों वो ऐसे क्लेशों का सामना करते हैं। परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद और परमेश्वर के संतान बनने के बाद जिन क्लेश और सताओं का आप सामना करते हैं वे उनसे अलग होते हैं जिनका सामना आप तब किया करते थे जब आप संसार में थे। तो फिर वे कितने अलग है, जिस तरह से फिलिप्पियों 3:20 पर कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आन की बाट जो रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तो आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। और फिर इस समय के बाद स्वर्ग के नागरिक होने के नाते आपको स्वर्ग के नियम का पालन करना चाहिए, मगर जब आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो शत्रु दुष्ट और शैतान आपके विरुद्ध दोष लगाता है। शत्रु दुष्ट और शैतान की दृष्टि में एक समय में आप संसार के पाप में पड़े हुए थे, शैतान की संतान थे, परंतु शैतान ने आपको खो दिया जब आप परमेश्वर की संतान बने। इसलिए शैतान पागलपन के साथ आपको वापस लाने के तरीके ढूंढता है। जब कभी भी संभव हो शैतान आप पर दोष लगाने की कोशिश करता है, क्लेश और सताव आपके विरुद्ध लाने की कोशिश करता है, जिसके कारण आप मुश्किलों का अनुभव करते हैं, कष्टों का अनुभव करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलती से यह विश्वास कर बैठते हैं कि परमेश्वर की बचा से ऐसी मुश्किलें उनके ऊपर आती हैं, जबकि वो अपने ही गलती के कारण इन मुश्किलों का सामना करते हैं। इसलिए आपको कभी भी इस तरह से गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। हमारा परमेश्वर किसी को अभिलाषा में नहीं डालता, जिस तरह से याकूब 1:13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकते हैं और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी तरह के क्लेश और सताव हमारे ऊपर नहीं लाता है। क्लेश और सताओं का हमारे ऊपर आने का कारण यह है क्योंकि आप अपने ही लालच से परीक्षा में पड़ते हैं, जैसे कि 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, खास तौर पर हमारे पुरुष सदस्य, जब आप आर्थिक मुश्किलों से गुजरते हैं, क्लेश और सताओं से गुजरते हैं, तो वे सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं आई। यद्यपि आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन अपने लालच के चलते आप अभिलाषा में फंसते हैं और परीक्षा में पड़ते हैं। अपने ही लालच के कारण आप अभिलाषा में फंसते हैं। क्यों आप क्लेश का सामना करते हैं अभिलाषा में फंसने के बाद? मुझे सुनने को मिला कि किसी ने कुछ पैसा उधार दिया और अब वो मुश्किल में है, क्योंकि उसे उसका पैसा वापस नहीं मिला। वो मेरे पास आया और उसने मुझे ये कहानी सुनाई, और मुझे यह भी सुनने को मिला कि वो डिप्रेशन में है और उसका पूरा परिवार कष्ट में है। मैं आश्चर्य में हूँ कि क्यों उसने पैसा उधार दिया। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको कभी भी किसी विश्वासी भाई या बहन को ना तो कोई उधार देना चाहिए ना कोई उधार लेना चाहिए। जब मैंने उसे पूछा कि क्यों उसने वचन का पालन नहीं किया, तो उसने कहा कि उसने उसे अनदेखा किया, उसने उसे अनदेखा किया। लेकिन अब वो समझ पाया कि मेरा कहने का मतलब क्या था। आप अपने लालच के चलते अभिलाषा में फंस जाते हैं। अभिलाषा में फंसने का अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा, और फिर आप कष्टों से और सताओं से गुजरते हैं। संक्षिप्त रूप से कहें, क्योंकि आप अपनी लालसा के चलते अभिलाषा में फंस जाते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं और पाप करते हैं। इस संसार में भी संसार के किसी भी नियम को तोड़ना गैर कानूनी है। यदि आप ऐसा करें और अगर आप पकड़े जाएं, तो आपको सजा मिलती है। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा परमेश्वर केवल अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना चाहता है, परंतु जब बच्चे पाप करते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो शैतान उन पर दोष लगाता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर उन बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाता जो पाप करते हैं। शत्रु दुष्ट और शैतान उन बच्चों के ऊपर अधिक से अधिक क्लेश और दुख लाता है जितना अधिक वे पाप करते हैं। मगर अवश्य ही आपको समझना चाहिए कि ये सब परमेश्वर का प्रेम है। याकूब 1:15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी अंततः मृत्यु है। क्या होगा अगर परमेश्वर की संतान अकेले छूट जाएं और मृत्यु के मार्ग पर चले जाएं? क्या ऐसी संतान को अकेला छोड़ना सच्चा प्रेम है? जो संतान पाप करते हैं और मृत्यु की ओर चले जाते हैं, प्रेमी परमेश्वर उन्हें देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता और उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर शत्रु दुष्ट और शैतान को अनुमति देता है कि उनके विरुद्ध क्लेश और आजमाइश लाएं, उस दोष के अनुसार जो उन पर लगा है, ताकि वे संतान उस सजा के द्वारा पश्चाताप कर सके और वापस फिर सके। इसलिए इब्रानियों 12:5-6 कहता है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। यदि प्रभु की ओर से आपकी कोई ताड़ना होती है, तो आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपकी ताड़ना करता है, अन्यथा आप नरक और मृत्यु की मार्ग की ओर चले जाएंगे। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना पुत्र मानता है, इसलिए आपको कोड़े लगाता है, आपकी ताड़ना करता है। अवश्य ही आपको प्राण देने तक पापों को दूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करें बल्कि पाप करें, तो फिर कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर आपको अनदेखा करेगा। अंततः आप नरक में गिर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको अपना सच्चा पुत्र या पुत्री मानता है, इसलिए परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है। वो आपकी ताड़ना नहीं करेगा यदि आप व्यभिचार के पुत्र हो। यदि परमेश्वर आपको अपना पुत्र या पुत्री ना माने, तो वो आपको ताड़ना नहीं देगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय में ये लिखा हुआ है,
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है।
जब लोग पाप करते हैं, शरीर के काम करते हैं, तो गंभीर बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। हॉस्पिटल उनके लिए फिर कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बीमारियां जो उन्हें लग जाती है, जब परमेश्वर उन्हें अनदेखा करता है तो वो ठीक नहीं हो सकती। लगातार गंभीर समस्याएं फिर उनके पास आती रहती हैं। जब वे पश्चाताप करें अपने हृदय का समर्पण करते हुए, तो परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं। चंगाई पाने के बाद जब वे सचमुच अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं कि वे फिर से ऐसा नहीं करेंगे और फिर प्रार्थना ग्रहण करें, तो परमेश्वर उनके ऊपर कार्य करता है। परंतु संभावना यह होती है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे पश्चाताप करते हैं क्योंकि वे बहुत बीमार है, मगर वह ऐसा अपने हृदय की गहराई से नहीं करते। इसीलिए जब आप किसी क्लेश या किसी सताव का सामना करें, अवश्य ही सबसे पहले आप अपने आप को जांचें और पहचानें कि क्या यह प्रभु पर विश्वास करने की वजह से या पाप करने की वजह से हुआ है। यदि आजमाइशें आपकी अपनी गलतियां हैं, तो तेजी से आपको पहचानना चाहिए कि गड़बड़ी क्या है, पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, ताकि आप वापस प्रभु की आशीषों में आ सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। जब तक आप सत्य में चलेंगे, जो कि परमेश्वर का नियम है, तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपको छू नहीं सकता। तमाम क्लेश और सताव आपको छोड़ के चले जाएंगे और सब कुछ संपन्न होगा। इसीलिए जब सताव या क्लेश आपके ऊपर आते हैं, ये आपके लिए अवसर है कि आप अपने आप को जांचें, आवश्यक बदलाव करें और आशीषें पाएं। इसीलिए आप प्रसन्न हो सकते हैं, हर वक्त धन्यवादी हो सकते हैं। और अब 9 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी दरिद्रता को भी जानता है, सिर्फ क्लेश ही नहीं। तो फिर ये दरिद्रता क्यों आती है? आपको आर्थिक आशीषें मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अवश्य ही संपन्न होना चाहिए। जैसे जैसे आपका आत्मा और प्राण संपन्न होता है, जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, जब आप सही से परमेश्वर को जाने, सही से उस पर विश्वास करें, तो सब कुछ ठीक होगा। दरिद्रता दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। पुराने और नए नियम में लिखा हुआ है ये। यदि आप अच्छा मसीह जीवन जिए, तो आपका आत्मा और प्राण संपन्न होना चाहिए। जब आपका आत्मा और प्राण संपन्न होता है, तो उसी सीमा तक परमेश्वर आपको आशीष देता है, जिस सीमा तक वो आपके साथ रहता है। आप संसार से अलग हो जाते हैं, इसलिए आपका आत्मा और प्राण संपन्न होता है। आप आशीष पाते हैं, स्वस्थ की आशीष, आर्थिक आशीष। लेकिन संभावना यह होती है कि आप दरिद्रता का सामना कर सकते हैं, जब आप प्रभु में निवास करते हैं उसके बाद। जब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, उसकी तुलना में मेहनत के साथ, जोश के साथ काम करने के बावजूद भी आप आजमाइश का सामना कर सकते हैं या किसी अन्याय स्थिति का सामना कर सकते हैं। कभी कभार आपको अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है या छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आपकी नौकरी प्रभु का दिन पवित्र मानने से आपको बाधित करती है। इस तरीके से आप आर्थिक मुश्किलों का सामना कर सकते हैं या दरिद्रता का। परंतु यह अस्थाई है। इस संसार में प्रभु कैसे आपको थोड़े से समय के लिए भी दरिद्रता का सामना करने देंगे, जब आप इसलिए पीड़ा उठाते हैं क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। चाहे आपका सहकर्मी आपकी कार्यशाला में कितना ही कठोरता से आप पर सताव क्यों ना करें, लेकिन अगर आप लगातार ज्योति और भलाई से उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो अंततः वे समर्पण कर देंगे और अपना स्तर आपके सामने झुकाएंगे। इस चर्च में बहुत से सदस्य लाइट एंड सॉल्ट मिशन के, और वे जो सबत के दिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस तरह के मामलों का अनुभव किया है, और अंततः उन्होंने आशीषें पाई प्रभु से दरिद्रता के बजाय। मगर इस स्थिति के अलावा दरिद्रता हो सकती है, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए चुनता है। मेरे मामले में
पूरे साल भर मैं अपने लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करता। जो कोई भी आर्थिक आशीषें मुझे मिलती हैं, मैं सभी को इकट्ठा करके परमेश्वर को देता हूं या दान के कामों के लिए देता हूं। पूरे साल भर मैं अपने लिए एक मोजे का जोड़ा भी नहीं खरीदता। मैं पूरे विदेशी मिशन का खर्चा उठाता हूं और साथ ही दान का काम भी मैं करता हूं। पैसा बचाने के लिए मैं बाहर खाना खाने भी नहीं जाता। मैं साल में ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार जा सकता हूं। इस कलीसिया में बहुत सारे सदस्य हैं जो अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते, बल्कि जो कुछ उनके पास है उसे परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के मंदिर के लिए प्रेम के कारण। हालांकि वे ऐसे ऐसे पदों पर है जहां पर जो कुछ वे चाहे उन चीजों का आनंद ले सकते हैं। ये वो मामला है जहां पर वो धन्यवादी होकर अपने आप को दरिद्र बनाते हैं, क्योंकि वे प्रभु से प्रेम करते हैं। तो फिर हमारा ये परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर उन लोगों के लिए चुपचाप नहीं बैठेगा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी कलीसिया से। परमेश्वर महानता से स्वर्ग में उन्हें फल देगा और साथ ही इस धरती पर भी जो कुछ उन्हें आवश्यकता है परमेश्वर उन्हें वो देगा। उनका आत्मा और प्राण परमेश्वर संपन्न बनाएगा और उन्हें स्वस्थ रखेगा। इसलिए प्रभु कहता है, परंतु तुम धनी हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। परमेश्वर कहता है, सोना उसका है, चांदी उसका है। इसलिए सोना और चांदी वो सब प्रभु का है। वो बहुत ही धनवान है, बहुत ही संपन्न है, परंतु तो भी तुम्हारे लिए वो कंगाल बना। वो कंगाल पैदा हुआ और उसने कंगाल जीवन जिया। उसने अपना लहू बहा दिया हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए, और उसे कोड़े मारे गए हमें चंगा करने के लिए। इस प्रकार से हमें धनी बनाने के लिए उसने गरीब जीवन जिया। इसीलिए वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य ही अपनी गरीबी पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें धनी बनना चाहिए और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अब्राहम, जिसे परमेश्वर महानता से प्रेम करता था, उसने महान आशीषें पाई। वे जो परमेश्वर से प्रेम करते थे उन्होंने आशीष पाई, जैसे कि राजा दाऊद, राजा सुलेमान। जब उन्होंने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, मूर्ति पूजाएं की, तो उन पर आक्रमण हुए। ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप धनी हो जाओ। परमेश्वर आपको ये नहीं कहता कि आप कंगाल जीवन जियो। जब आप परमेश्वर का वचन अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि तुम जब अंदर आते हो, बाहर जाते हो, आशीष पाओगे। तुम आशीष पाओगे कि सिर बनो, पूंछ नहीं। परमेश्वर यह भी प्रतिज्ञा करता है कि आपका प्राण संपन्न होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और वो आपको हिला हिलाकर ढुला ढुला कर उभरती हुई आशीषें भी देता है। यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है और सबसे अधिक धनी है, मगर इसके बावजूद भी वो गौशाला में पैदा हुआ, चरनी में रखा गया। इस धरती पर रहते हुए भूख का उसने सामना किया, जंगलों में उसे सोना पड़ा। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि उसने हमारे कंगालपन को, दरिद्रता को ले लिया, ताकि इसके श्राप से हम मुक्त हो सकें। इसीलिए विश्वासी होने के नाते हम गरीब नहीं रह सकते। हमें अवश्य ही अपने धनवान होने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। मगर सिर्फ परमेश्वर की संतान होना वो अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको कोई जरूरतें अब नहीं पड़ेगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ये शर्त है, धनी बनने की शर्त है ये। आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, उसमें निवास करना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में निवास कीजिए तो वो आपको आशीष देगा। जब हम अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, वो आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर आपको सिर बनाएगा। हमारे सदस्य बहुत अच्छे से उन्नति पा रहे हैं, हालांकि अभी उनका समय नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर कार्य करता है। इस तरह से इस कलीसिया के बहुत सारे सदस्य उन्नति पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जिन्होंने गवाही दी है अपने प्रमोशन की आशीषों की। आप बहुत तेजी से उन्नति पा रहे हैं और आप बहुतों को उधार देंगे मगर किसी से लेंगे नहीं। बहुतों को उधार देंगे लेंगे नहीं। आप इस कलीसिया को देखिए, परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऐसा बनाया है कि संसार में दूसरी कलीसियाओं की अगुवाई कर रहा है जब हम परमेश्वर के वचनानुसार चलते हैं। मगर अगर आप दरिद्रता में हैं, क्लेश और सताव में हैं, तो कृपया जांचिए कि क्या आप परमेश्वर के वचन में निवास करते हैं। ये मूर्खता है। यदि आप आशीषें ना पाएं, यद्यपि आप वचनानुसार जीते हैं, यदि सचमुच आप आत्मा और भलाई में आएं, दुल्हन के समान अपने आप को सजाएं, निरंतर प्रार्थना करें, वचन का पालन करें, उसका वचन माने, नम्र बने, अपने लाभ को छोड़ दूसरों की सेवा करें, लालची ना बने, तो आप आशीष पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे, इसीलिए आप ज्यादा बोइए तो फिर आप ज्यादा काटेंगे। क्या आप इसीलिए नहीं बो सकते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है? बजाय इसके आप अधिक बोइए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर जो कुछ आपने बोया है वो अंकुरित होगा और आप उन्हें काट पाएंगे। यदि आपके पास विश्वास है तो आप इसे करेंगे। धनी बनने के लिए आप ऐसा करेंगे। यदि आपने ये सब किया है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपने आशीषें नहीं पाई? खास तौर पर यदि आप ऐसा पाप करें जिसे परमेश्वर घृणा करता है और अपने और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार बनाएं, तो आप संपन्न नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही मेहनत क्यों ना करें, जब तक कि आप उस दीवार को ना ढा दें। और उसी वक्त आपको एहसास करना चाहिए कि संपन्न ना होना वो भी आशीष है, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने आप को जांचते हैं, पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। यदि सचमुच आप परमेश्वर के वचनानुसार जिए, ज्योति में चलें, तो आप क्लेश, सताव और दरिद्रता का सामना नहीं करेंगे। चाहे आप सामना करें भी प्रभु के नाम की खातिर, तो यह अस्थाई होगा, लेकिन अंततः यह दूर हो जाएगी और आप और भी महान आशीषें पाएंगे। वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं और वे जो परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं भलाई और नम्रता के साथ, परमेश्वर उन्हें संशोधित करेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें शोधित करना चाहता है ताकि उनका आत्मा और प्राण संपन्न हो, और तब उन्हें आशीष देता है। अय्यूब कितना परमेश्वर का भय मानता था और भलाई में जीवन जीता था, वो दोष रहित था, परंतु परमेश्वर ने शैतान के दोष को ग्रहण किया। परंतु बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि हालांकि अय्यूब तो धर्मी था, दोष रहित था, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा की और अय्यूब ने सब बातों को सहा और अंततः आशीष पाई। लेकिन अगर आप अय्यूब को सावधानी से पढ़ें, तो आप देख सकते हैं कि अय्यूब के स्वभाव में जो छुपी हुई बुराई थी वो प्रकट हुई उस संशोधन की पूरी प्रक्रिया में। जब उसने अंततः पश्चाताप किया तो उसने चंगाई पाई और आशीषें प्राप्त की। जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, उसकी गहरे स्वभाव में छुपी हुई बुराई वो दूर हो गई और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। वो आशीष जो अय्यूब ने पाई वो अत्यधिक आशीष थी, क्योंकि वो पूरा में उस वक्त सबसे अधिक धनी था। इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने उसे सुंदर पुत्र और पुत्रियां दी। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, वो स्वस्थ था और उसने बहुत से बच्चों को जन्म दिया। परमेश्वर ने उसे ऐसी महान आशीषें दी। जब अय्यूब ने अपने स्वभाव में छुपी हुई बुराई को दूर किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब उसने अपनी मूल बुराई और उसके मूल स्वभाव में बुराई की चीजों को दूर किया, जब उसने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसे स्वस्थ की आशीष दी, बच्चों की आशीष दी। जो कुछ अय्यूब ने खोया था सब कुछ पुनः पाया। मगर सब बातों से बढ़कर अनंत स्वर्ग परमेश्वर की बचाई हुई संतान के लिए तैयार है। जिस तरह से आपका आत्मा और प्राण संपन्न होता है, तो इस संसार में भी सब कुछ समृद्ध होगा। इसीलिए वे कितने धनी हैं। आप धनवान होने की इस बहुतायत की आशीष का आनंद ले सकें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 9 पद के दूसरे हिस्से में वो कहता है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को मैं जानता हूँ। यहूदी मूल रूप से परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर का चुना हुआ समाज है। इसलिए आज वो सभी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे आत्मिक रूप से यहूदी हैं। लेकिन इस आयत में लिखा है, वे जो कहते हैं कि यहूदी हैं, वे जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं। यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग होने चाहिए थे, और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग यीशु के दिनों में, वे जो अपने आप को यहूदी कहते थे, उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं माना। उसे मानने के बजाय उन्होंने उस पर सताव किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अंततः क्रूस पर उसे चढ़ा दिया। आज भी ऐसा ही होता है। उन लोगों में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्यों की निंदा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, बैर रखते हैं, ईर्ष्या और जलन रखते हैं दूसरों से, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे उनके अनुसार नहीं है। कैसे हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर की चुनी हुई संतान के रूप में ग्रहण करेगा? ऐसे बहुत से पंथ है इस देश में, जो कुछ वो सिखाते हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। निर्भर करता है कि आप कौन से पंथ से सीखते हैं, कौन सी सेमिनरी से वो उत्तीर्ण हुए हैं, उसी के आधार पर उनके विचार अलग होते हैं। वे सबके सब भिन्न हैं, और उन्हें लगता है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है केवल वही सही है। हालांकि बहुत सारे पंथ हैं, अलग अलग शिक्षाएं हैं, और वो केवल वही सही समझते हैं जो कुछ उन्होंने सीखा है। जो कुछ उन्होंने सीखा है उन्हें वही सही लगता है। वे दूसरों को अनदेखा करते हैं, दूसरों की शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं, और दूसरों को वो कुपंथ तक कहते हैं। यद्यपि बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे पंथ हैं, वे कैसे अपनी ही बात पर अड़े रह सकते हैं? सब कुछ की नींव परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन एकमात्र सत्य है। उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बाइबल में है पहचान करनी चाहिए। उन्हें अपने प्राचीनों की परंपराओं के आधार पर चीजों की पहचान नहीं करनी चाहिए, ना ही उन बातों के आधार पर जो उन्होंने स्कूल में सीखा है। उत्तर बाइबल में है। परमेश्वर का वचन उत्तर है। परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्हें चीजों की पहचान करनी चाहिए, केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर। उदाहरण के लिए कुछ कलीसिया कहती है कि अन्य भाषा में बोलना उचित नहीं है। क्या परमेश्वर ने ऐसा कभी कहा है कि अन्य भाषा में बोलना गलत है? वे बाइबल को अलग अलग तरह से अनुवाद करते हैं। उन्हें उसका अनुभव करना है, तब वे एहसास करेंगे। कुछ कलीसियाएं कहती हैं कि प्रार्थनाओं में पुकारना ये उचित नहीं है। वे कहते हैं कि क्या परमेश्वर आपको नहीं सुनेगा जब तक आप अपनी प्रार्थनाओं में ना पुकारो? वे आत्मिक चीजों को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि हम प्रार्थना में पुकारें, दोनों ही पुराने और नए नियम में। वे नहीं जानते कि क्यों हमारे प्रभु ने तब तक प्रार्थना की जब तक कि उसका पसीना लहू की बूंदे ना बन गया। अप्रैल में रात में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 10 या 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। हमारे प्रभु ने तब तक प्रार्थना की जब तक कि उसका पसीना लहू की बूंदे ना बन गया ऐसे मौसम में। क्यों उसने ऐसी प्रार्थना की? ऊंची आवाज में वो भिखारी क्यों चिल्लाया कि दाऊद के पुत्र? बाइबल में ये लिखा हुआ है, यद्यपि उसके चेलों ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन तो भी वो भिखारी ऊंची आवाज में चिल्लाता रहा कि यीशु दाऊद के पुत्र। तब उसने उत्तर पाया और प्रभु से मुलाकात की। उन्हें ये पता होना चाहिए, बाइबल कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के चेलों ने उस भिखारी को चुप रहने को कहा था, बावजूद इसके वो भिखारी ऊंची आवाज में चिल्लाया। यदि चिल्लाना गलत होता तो बाइबल में लिखा होना चाहिए था कि भिखारी को उत्तर नहीं मिला, मगर उसे उत्तर मिला। हमारे प्रभु ने भी ऊंची आवाज में पुकारा जब उसने प्रार्थनाएं की। बहुत ही गंदी बदबू थी क्योंकि चार दिन हो चुके थे अंतिम संस्कार के बाद, और उस वक्त हमारे प्रभु ने क्या किया? उसने ऊंची आवाज में आज्ञा दी, लाजरस निकला। हमारा प्रभु ऊंची आवाज में पुकारने लगा। क्या आपको लगता है कि क्रूस पर उसके पास कोई ताकत अब बची थी? उसने अपना तमाम पानी और लहू बहा दिया। वो क्रूस पर लटका हुआ था झुलसाती हुई गर्मी के नीचे दिन के समय, परंतु जब वो अंतिम सांस लेने वाला था उसने ऊंची आवाज में पिता को पुकारा कि पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। उन्हें सीखना चाहिए कि क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि हम प्रार्थना में पुकारें, और क्यों विश्वास के पूर्वज और प्रभु के चेलों ने पुराने और नए नियम में प्रार्थनाओं में पुकारा। उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों है ऐसा। उन्हें आत्मिक अर्थों को सीखना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि यह गलत नहीं है, यह परमेश्वर का आदेश है। उन्हें उसके वचन का पालन करना चाहिए। आत्मिक अर्थ के अनुसार वे कुछ और नहीं बल्कि प्रार्थनाओं में पुकारते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को जांचता है, परंतु जब उसकी असंख्य संतान प्रार्थना कर रहे होते हैं तो क्या उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनना पड़ता है? आत्मिक संसार में एक नियम है, स्वर्ग में भी एक नियम है, और वहाँ के क्रम माने जाते हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारे चाल चलन को, हमारी क्रियाओं को देखते हैं। ऐसे स्वर्गदूत है जो हमारे कामों को रिकॉर्ड करते हैं। यह इब्रानियों में लिखा हुआ है, इसलिए स्वर्ग में स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें सोने के धूपदाने में डालते हैं और उसे प्रधान स्वर्गदूत को देते हैं, और फिर प्रधान स्वर्गदूत उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर की सोने की धूपदानी में डालते हैं। जब वो धूपदानी भर जाती है तो हम उत्तर पाते हैं। परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को जांच सकता है, मगर स्वर्गदूत नहीं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रार्थना की सुगंध को उस धूपदानी में डालते हैं। इसीलिए प्रार्थना का एक भी शब्द गिर नहीं जाता है। जब हम अपनी आवाज में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत उस आवाज को सुनते हैं और उसे उस धूपदानी में डालते हैं। धूपदानी को वो स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत को देता है और प्रधान स्वर्गदूत उसे परमेश्वर को देता है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी हृदय को जान सकता है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में पुकारना पड़ता है। इस तरह से ये कारण पाया जाता है। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने आदम को कहा कि वो परिश्रम के साथ खाया करेगा। ये पुराने नियम में है। इसीलिए उत्तर पाने के लिए हमें प्रार्थनाओं में पुकारना होता है। इसीलिए परमेश्वर के काम में बाधा डालने के बजाय जब वे परमेश्वर के वचनों को सुने तो उन्हें पालन करना चाहिए, उन्हें सही से सिखाना चाहिए। केवल तभी प्रेम और परमेश्वर के कार्य प्रकट हो सकते हैं। इसलिए वे वो हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। प्रभु कहता है कि वो ऐसे लोगों को जानता है। वे वो हैं जो परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हैं, और यह भी कि वो यहूदी नहीं है। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। वे परमेश्वर के राज्य को बाधित करते हैं, परमेश्वर के दास और कलीसियाओं को। प्यारे भाई और बहनों, चाहे आप या दूसरे क्यों ना सोचें कि आपका विश्वास बहुत महान है, चाहे आप धर्मी या भले क्यों ना दिखें, ये सब व्यर्थ होगा अगर परमेश्वर आपको स्वीकारे ना। यीशु कहता है मती 13 अध्याय 49 और 50 पद में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। रोमियो में लिखा है कि जब आप प्रभु के पुनरुत्थान पर अपने मन से विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हो जाते हैं। वे जो मन में विश्वास करते हैं, वचन मानते हैं, तो वे धर्मी कहलाते हैं। वे हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, असत्य दूर करते हैं और धर्मी कहलाते हैं। उन्हें धर्मी जन कहा जा सकता है। पुराने नियम में वे जो धर्मी कहलाते थे उनके साथ परमेश्वर चलता था। आप पापी नहीं रहते, प्रभु ने हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया है और हम परमेश्वर की पवित्र संतान हैं। परंतु समय के अंत में स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और उस स्थान में रोना और दांत का पीसना होगा। यद्यपि वे परमेश्वर की संतान लगते हैं, धर्मी लगते हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो बुराई करते हैं, वचनानुसार नहीं जीते बल्कि बुराई करते हैं। वे अपने आप को परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोग कहते हैं, मगर वो शरीर के काम करते हैं, बुराई करते हैं, इसलिए उन्हें अलग कर दिया जाएगा और आग के कुंड में डाला जाएगा। हालांकि वो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, यदि उनकी बातें और कार्य परमेश्वर की संतान के समान नहीं है, तो फिर वे वो है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और यह अंतिम न्याय के दिन प्रकट हो जाएगा। न्याय के अंतिम दिन से पहले उनके फल जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वो पहले से ही उनके जीवन में प्रकट हो चुके होंगे। यदि वे परमेश्वर के जन होते तो वे पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करते, वे सत्य में निवास करते, एक दूसरे से प्रेम रखते, दूसरों से मेल मिलाप रखते, अच्छे काम और अच्छी बातों के फल उत्पन्न करते। परंतु यदि वे ईर्ष्या, जलन, दोष, निंदा, बैर और अनबन उत्पन्न करते हैं तो ये कार्य किसके होंगे? ये शैतान के काम है। इसीलिए जब दो से अधिक लोग इकट्ठा होकर शैतान का काम करते हैं तो उन्हें शैतान की सभा कहा जाता है। आज बहुत सारी कलीसियाएं मुश्किलों और कलेशों का सामना कर रही हैं। यद्यपि उनमें हजारों सदस्य नहीं हैं, तो भी कलीसियाएं बहुत से हिस्सों में बंटी हुई हैं। वे तर्क वितर्क करते हैं और उनमें क्लेश है। उन्हें एक होना चाहिए सत्य में और पवित्र आत्मा में बंधकर। उनमें प्रेम और शांति होनी चाहिए। उन्हें प्रेम में और शांति में बंधा होना चाहिए, मगर वे नहीं है। हम और भी गहराई से शैतान की सभा के बारे में अगले सत्र में सीखेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यदि आपका हृदय धनी है तो आपके आसपास की स्थिति और अवस्था मायने नहीं रखती। जब मैं कहता हूं कि हृदय धनी है, इसका मतलब यह है कि आपका हृदय स्वर्ग की आशा से भरा है और आप अपने विश्वास को और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को नहीं खोते उन प्रतिफलों को देखकर जो आप प्राप्त करेंगे। और दूसरी तरफ आत्मा में धनी होना, जो कि आत्मा में दीन का विपरीत है, जो कि मती 5:3 पद में लिखा हुआ है, वो उन लोगों का हृदय है जो लालच, अभिलाषा और इस संसार के घमंड से भरे हुए है। इसीलिए जब मैंने कहा कि हृदय धनी है, यह आत्मा में दीन का विपरीत अर्थ नहीं है जैसा कि मती 5 में है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हृदय में धनी होना इसमें आत्मिक चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि स्वर्ग की आशा, प्रेम और विश्वास। दूसरा कुरिन्थियों 6:10 पद में उन लोगों के बारे में इस तरह से बताता है, शोक करने वाले के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। कोई भी कलेश, दरिद्रता या सताव ऐसे लोगों को जो हृदय में धनी है कमजोर नहीं बना सकते, और यह आप में से जो यहाँ पर है हर एक पर लागू होता है। इसलिए कृपया आत्मिक चीजों से अपने हृदय को धनी बनाइए, जिसे पिता परमेश्वर आपको देते हैं। तो फिर चाहे कोई भी मुश्किल या पीड़ा का सामना आप क्यों ना करो, वे आपके मार्ग पर बाधा नहीं हो सकते। आपको भूसी नहीं बनना है जो केवल बाहरी रूप से अच्छा दिखती है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे आशा है कि आप आत्मिक फलों से लदे रहें, ताकि प्रभु आपकी प्रशंसा करें जो ये कहेगा कि तुम धनी हो। इसीलिए आपका धनवान होना बाहरी रूप से प्रकट हो और बहुतायत के और सुंदर फल उत्पन्न करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। संदेश को आशीष दीजिए जो हमने सुना है आज, कि हम में जीवन और विश्वास बने। पिता परमेश्वर हम पर कार्य कीजिए, हमें आशीष दीजिए कि अच्छे से हम संदेश सुने, इसकी रोटी बनाएं, वचन को माने और वचन पर चलें। पिता हमें आशीष दीजिए कि हर वक्त हम मूल ज्योति से घिरे रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।